بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا، پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کاری کے لیے تیار کر دیں گے، اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاپ پرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا، کنتو اتین درباگ والا اس سے کترائے گا، وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں، بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، کاریکرم کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ آج گروار ہے، دسمبر کی 16، جمادی الاول کی 11 اور آذر ماہ کی 25 تاریخ۔ کاریکرموں میں آپ پہلے وشو سماچار سنیں گے، پھر ہم راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم پیش کریں گے۔ راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم کے اپرانت ساپتاہک کاریکرم پیش کیے جائیں گے، آج کی بات اور سفل مہیلائیں۔ تو شوتاؤ، یہ تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا۔ ہمارے ان کاریکرموں کے بارے میں آپ اپنے وچاروں کو ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ وچاروں کو بھیجنے کے لیے آپ ای میل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ اور اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے پرمانو وارتا کار نے کہا ہے کہ اگر سارے پکش گمبھیرتا سے کام لیں تو وارتا میں پرگتی ہوگی۔ عراقی سانسد نے کہا ہے کہ داعش کی تلاش میں امریکہ کسی بھی پرکار کا سہیوگ نہیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں ایک سیرین سینک کی موت ہو گئی۔ کورونا سے نپٹنے میں برٹین کے پردھان منتری کے کاموں کی آلوچنا ہو رہی ہے۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وستار سے سماچار سنیے۔
ایران کے مکھیہ پرمانو وارتاکار اور ودیش اپ منتری علی باقری نے جاری وارتا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سارے پکش گمبھیرتا سے کام کریں تو پرگتی سمبھو ہے۔ علی باقری نے ٹویٹ کیا ہے کہ پچھلے دنوں کے حالات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر سبھی پکش گمبھیر ہوں تو آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وارتاکاروں اور وشیشجوں کے استر پر سگھن وارتا جاری ہے۔ وہیں دوسری اور ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا نے تین یورپی دیشوں کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس بیان میں امریکہ کی کھلی غلطی کا کوئی ذکر نہ ہو، وہ بیان دینے والوں کی تتھیوں سے منہ چھپانے کی کوشش کو درشاتا ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا خطیب زادے نے بدھوار کی رات ٹویٹ کرتے ہوئے ایٹمی ڈیل کے بارے میں یورپ کے بیان کی آلوچنا کی، جس میں ایران کو ورتمان استھتی اور وینا میں پرمانو وارتا کے طول پکڑنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔
ایران اور وشو شکتیوں کے بیچ ہونے والے پرمانو سمجھوتے کے انترگت گھٹنا کرم تیز ہے، مگر اس بیچ یورپی دیشوں کی وجہ سے وارتا میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ نے سنیکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو اینٹونیو گوٹیرس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں گوٹیرس نے آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کے سمجھوتے کی پرشنسا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے وینا میں جاری وارتا پرکریا میں وشواس بحالی میں مدد ملے گی۔ ودیش منتری امیر عبداللہ کا کہنا تھا کہ ایران کی وارتا کار ٹیم اچھے سمجھوتے کے لیے گمبھیرتا سے پریاس کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ یورپی دیشوں کی اور سے وارتا کی میز پر سارتھک پرستاو لانے میں نشکریتا کے کارن وارتا پرکریا کی گتی بہت دھیمی ہے۔
ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता ने आईएईए के कैमरे लगाए जाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। बहरूस कमालवंदी ने गुरुवार को कहा है कि तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से विस्तृत जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कैमरे फिर से करज के तसा प्रतिष्ठान में लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि तय ये पाया है कि गहन तकनीकी समीक्षा के बाद ईरान को आईएईए की ओर से कैमरा दिया जाएगा। इसी बीच एजेंसी के विशेषज्ञ इस कैमरे के बारे में ईरान के विशेषज्ञों के सवालों के जवाब देंगे। इसके बाद समीक्षा के उपरांत आईएईए के कैमरों को फिर से लगाया जा सकेगा। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता ने बताया कि कैमरों की प्रक्रिया ये रहेगी कि वे फोटो खींचेंगे जो उनकी मेमोरी में बाकी हैं। जब मेमोरी भर जाएगी तो उसके कार्ड को निकाल लिया जाएगा, उसके बाद उनको सील करके ईरान तथा परमाणु ऊर्जा एजेंसी के हवाले कर दिया जाएगा।
इराक के एक सांसद ने बताया कि दाइश को ढूंढने में अमेरिका कोई भी सहायता नहीं करता। इराक के सांसद तथा अलफतह गठबंधन के सदस्य जब्बर अल मामूरी ने बताया कि इराकी सुरक्षा बल और सेना दाइश की तलाश में है, जबकि अमेरिका इस बारे में कोई भी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं करवाता। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास 5 से 7 सैटेलाइट्स हैं जिनके माध्यम से वो इराक में होने वाली गतिविधियों पर बहुत आसानी से नजर रख सकता है। इस इराकी सांसद के अनुसार अमेरिका के निकट के संचार माध्यमों ये रिपोर्ट सफेद झूठ है कि अमेरिकी दाइश के बारे में इराक की सेना को जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने कहा कि दाइश की कुछ सुनियोजित कार्रवाइयां या एकदम से किए जाने वाले हमले ये बताते हैं कि उसके आतंकवादियों को इराक के भीतर या बाहर से जानकारियां मिलती रहती हैं।
इसराइल के मिसाइल हमले में सीरिया के एक सैनिक की मौत हो गई। ये हमला गुरुवार को तड़के दक्षिणी इलाके में एक चेकपोस्ट पर किया गया। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि इस हमले में एक सैनिक की जान चली गई और चेकपोस्ट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। साना के अनुसार गोलान हाइट्स के इलाके में यह हमला हुआ। इससे 9 दिन पहले इसराइल ने पश्चिमी सीरिया में लताकिया बंदरगाह पर हमला किया था, जिसके बाद बंदरगाह में आग लग गई थी, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इसराइल सीरिया के इलाकों पर बार बार हमले करता रहता है और सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नाकाम बना रहा है।
ब्रिटेन में कोरोना को सही ढंग से नियंत्रित न करने के कारण बोरिस जॉनसन की स्थिति कमजोर होती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान ब्रिटेन से ओमिक्रॉन के बारे में आने वाली खबरों से पता चलता है कि वहां पर इस बीमारी से संक्रमितों की रिकॉर्ड संख्या रही। वहां पर एक ही दिन में कल 78,610 से अधिक कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड मरीज संक्रमित हुए हैं। एक अध्ययन में ये कहा गया है कि ब्रिटेन में यदि अतिरिक्त नियंत्रण के उपाय नहीं किए जाते तो ओमिक्रॉन से इस देश में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस देश में 1 करोड़ से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन के कुप्रबंधन के कारण इस देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी अपने निचले स्तर पर है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि केवल वैक्सीनेशन से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यूरोपीय सरकारों यहां एक तरफ बीमारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन तेज कर रही हैं, वहीं ब्रिटेन में रोजाना ही संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। WHO का कहना है कि आरंभिक साक्ष्यों से तो यही लगता है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन को रोकने में ज्यादा प्रभावी नहीं होगी।
अमरीका और फारस की खाड़ी के किसी अरब देश के बीच ये अभूतपूर्व तनाव है। वॉशिंगटन में इमारत के दूतावास का कहना है कि हथियारों की डील पर बातचीत बंद की जा रही है। लेकिन अन्य मुद्दों को कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए जारी सप्ताह में पेंटागन से बातचीत होगी। क्षमा कीजिएगा, संयुक्त अरब इमारात ने अमेरिका से F-35 युद्धक विमान, ड्रोन और अन्य उपकरणों की खरीदारी के 23 अरब डॉलर के सौदे पर बातचीत रोक दी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की वर्तमान हालत पर चिंता जताई है। इमरान खान ने अफगानिस्तान के वर्तमान मानवीय संकट के प्रति चेतावनी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कहा है कि अफगानिस्तान में गहराते मानवीय संकट को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान संकट के प्रति विश्व समुदाय की निश्चेतता इस देश की जनता के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। इमरान खान का कहना था कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में उत्पन्न हुए मानवीय संकट को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करने के साथ ही साथ उसकी सहायता भी कर रही है। उन्होंने विश्व के अन्य देशों का आह्वान किया कि वे भी तालिबान की अंतरिम सरकार के साथ सहयोग करें। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान रविवार को होने वाली OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसका मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान के परिवर्तनों, विशेषकर वहां पर उत्पन्न हुई मानवीय स्थिति की समीक्षा करना है।
CIR ने बताया कि इस्लाम विरोधी गुट इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ सहयोग करके मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामी रिलेशंस ने बताया है कि अमेरिका में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ सहयोग करते हुए एक इस्लामी विरोधी गुट वहां की मस्जिदों और मुसलमान के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। CIR के अनुसार इस इस्लाम विरोधी गुट के प्रयासों को विफल बना दिया गया, जो बड़े पैमाने पर अमेरिका में धार्मिक स्थलों और मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही गोपनीय ढंग से सक्रिय था। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक अमेरिकी सैनिक रहने के बाद चले तो गए, परंतु वहां जो कुछ उन्होंने किया उसके असरात व प्रभाव 20 दशकों के बाद भी नहीं मिट पाएंगे। अफगानिस्तान का शायद ही कोई इलाका हो जहां विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के दुष्परिणाम दिखाई न दें। अमेरिकी सैनिकों ने जाते जाते काबुल हवाई अड्डे पर कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें 1-2 साल की बच्ची भी शामिल है। मारे गए लोगों के परिजनों का कहना है कि वो कातिलों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। चीन और रूस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका और पश्चिम की धौंस जमाने वाली नीतियों से बचने के लिए हर स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग जरूरी है। यही वजह है कि मॉस्को और बीजिंग संयुक्त सैन्य अभ्यासों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे से व्यापक सहकारिता व सहयोग कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 5 अगस्त 2005 के दिन को काले दिवस का नाम दिया है। पार्टी प्रमुख मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह अधिकार हमसे नई दिल्ली ने छीना है, इसलिए वही इस अधिकार को वापस कर सकती है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के निर्णय से जम्मू कश्मीर के लोगों में बेचैनी है और वे सख्त नाराज हैं।
उन बहनों से पूछो जिनके भाई शहीद हुए, उन माओं से पूछो जिनके बच्चे शहीद।
श्रोताओं, अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक अमेरिकी सैनिक रहने के बाद चले तो गए, परंतु वहां जो कुछ उन्होंने किया उसके असरात व प्रभाव 20 दशकों के बाद भी नहीं मिट पाएंगे। अफगानिस्तान का शायद ही कोई इलाका हो जहां विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के दुष्परिणाम दिखाई न दें। अमेरिकी सैनिकों ने जाते जाते काबुल हवाई अड्डे पर कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें 1-2 साल की बच्ची भी शामिल है। मारे गए लोगों के परिजनों का कहना है कि वो कातिलों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। बहनाम यजदानी की रिपोर्ट पेश करें साथ ही अहमद अब्बास।
पेंटागन के प्रवक्ता काबुल में कई परिवारों पर ड्रोन से किए गए मिसाइल हमले के 3.5 महीने बाद कहते हैं कि इस हमले के दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी। ये हमला दिन के समय हुआ था और इसमें 7 बच्चों सहित 10 बेगुनाह शहीद हो गए थे और वो कहते हैं कि कोई दोषी नहीं है। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि जो हुआ वो डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशन की प्रक्रिया में होने वाली गलती थी। इस हमले में किसी को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। यह हमला उस समय हुआ था जब अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिक भाग रहे थे और उस समय अमरीकियों ने पहले ये दावा किया कि उन्होंने दाइश के एक आतंकी को निशाना बनाया है जो हमला करने का इरादा रखता था, लेकिन जब उनका झूठ खुल गया तो फिर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इस हमले में 2 साल की मासूम बच्ची को भी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और ये हृदय विदारक घटना दिन में हुई। परिवार के मुखिया यूसुफी कहते हैं कि अचानक हमारे ऊपर हमला हो गया और घर के भीतर जो भी लोग थे सब निशाना बन गए। मारे गए परिवार के परिजनों का कहना है कि वो कातिलों को हरगिज माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये घटना वो पूरी जिंदगी कभी भी भुला नहीं सकते। ये बेहद हृदय विदारक घटना थी, इसमें पूरा परिवार साफ हो गया, यहाँ तक के छोटे बच्चे भी मारे गए।
باید سازمان ملل متحد به این مسئله باید جدن برخورد بکنه و دولت امریکا را مورد بازپرس قرار بده.
مانے گئے ویکتی کے بھائی منصور حیدری کا کہنا ہے کہ اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، سنیوکت راشٹر کو چاہیے کہ وہ سزا دے، سنیوکت راشٹر کو چاہیے کہ امریکی سینکوں کے خلاف ٹھوس کارواہی کرے۔
فعلا خو امریکا میں 35 ملین نفوس افغانستان آزادار
سا. افغان ناگرک نے کہا کہ امریکہ نے اپنے اپرادھوں سے 35 मिलियन अफगान नागरिकों को शोकाकुल कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय 95% अफगान नागरिक गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं जो अमेरिका की देन
है।
एक अन्य अफगान नागरिक ने कहा कि जिस दौरान अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद रहा बड़ी संख्या में बेगुनाह अफगान नागरिक मारे गए। परिवारों पर अमेरिका के इन हमलों की वजह से अफगान जनता अब मांग कर रही है कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पिछले 20 साल के दौरान अफगानिस्तान में अमरीका ने जितने भी हमले किए हैं उन सब की जाँच होनी चाहिए। अमरीकी सैनिक जिन्होंने अफगानिस्तान में बेशुमार अपराध किए हैं अब तक किसी एक भी अपराध के चलते उन्हें किसी अदालती कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा। काबुल से IRIB के लिए बेहनाम यजदानी की रिपोर्ट।
चीन और रूस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका और पश्चिम की धौंस जमाने वाली नीतियों से बचने के लिए हर स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग जरूरी है। यही वजह है कि मॉस्को और बीजिंग संयुक्त सैन्य अभ्यासों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे से व्यापक सहकारिता व सहयोग कर रही है। साथ ही सैयद में समबास।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये वर्चुअल मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, पूर्वी एशिया में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा तनाव बढ़ाने का प्रयास और सुरक्षा समझौतों जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस मुलाकात में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस और चीन के बीच सहयोग और संबंधों को 21वीं सदी में दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण करार दिया और उन्होंने कहा कि रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और अन्य संगठनों में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। शीत युद्ध के बाद रूस और चीन के संबंध संयुक्त चुनौतियों और हितों के मद्देनजर विस्तृत होते रहे हैं। खासतौर पर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका की नीतियां और कार्रवाइयां आज मास्को और बीजिंग के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। इस संदर्भ में पुतिन और जिनपिंग ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए सैन्य गठबंधन के गठन पर चिंता जताई और इसे विश्व में असंतुलन का कारण बताया। दोनों ही नेताओं का कहना था कि इस तरह का कोई भी सुरक्षा समझौता रणनीतिक क्षेत्र में तनाव में वृद्धि का कारण बनेगा। मास्को और बीजिंग का मानना है कि अमेरिका इस तरह के गठजोड़ों के जरिए इंडो पैसिफिक के वर्तमान समीकरणों को बदलने की कोशिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार यूरी ओशाकोव का कहना है कि मोटे तौर पर इस तरह का कोई भी सैन्य गठबंधन क्षेत्र में तनाव में वृद्धि का कारण बनेगा। गौरतलब है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद वाशिंगटन ने मास्को और बीजिंग को लेकर काफी कड़ा रवैया अपना रखा है। अमेरिका और रूस के बीच क्षेत्रीय संकटों को लेकर काफी गहरे मतभेद हैं और दोनों ही देशों के अधिकारी एक दूसरे पर चुनावों में हस्तक्षेप और साइबर हमलों में शामिल रहने के आरोप लगा दे रहे हैं। चीन और रूस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका और पश्चिम की ध्वंस जमाने वाली नीतियों से बचने के लिए हर स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग जरूरी है। यही वजह है कि मास्को और बीजिंग संयुक्त सैन्य अभ्यासों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे से व्यापक सहयोग कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 5 अगस्त 2005 के दिन को काले दिवस का नाम दिया है। पार्टी प्रमुख मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह अधिकार हमसे नई दिल्ली ने छीना है, इसलिए वही इस अधिकार को वापस कर सकती है।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 को जो निर्णय नई दिल्ली ने लिया वो जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस है, परंतु हम ये बताना चाहते हैं कि हमने नई दिल्ली के लिए एक पैगाम दिया है और हम ये चाहते हैं कि चूंकि नई दिल्ली ने हमसे ये छीना है और नई दिल्ली ये वापस कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनके दल ने नई दिल्ली के साथ वार्ता उसी समय आरंभ कर रखी है। उन्होंने कहा कि बाकी दलों ने लोगों को धोखा दी ही की और हम धोखे वाली सियासत नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त के निर्णय से जम्मू कश्मीर के अवाम में बेचैनी है और वो इससे सख्त नाराज हैं, परंतु हम ये बताना चाहते हैं या तो ये सुप्रीम कोर्ट या फिर भारत का लोकसभा ही हमें वापस कर सकता है, इसलिए हमें नई दिल्ली को एंगेज करना होगा। उन्होंने कहा कि जो यहाँ के क्षेत्रीय दल है वो राजनीति सिर्फ और सिर्फ जज्बाती करना जानते हैं और यहाँ के युवकों को वो उनके अनुसार गुमराह कर रहे हैं।
ये सड़कों पे क्यों नहीं निकले? अरे बाबा, ये सड़कों पे निकलते तो इनको बूंद डाला जाता गोलियों से। ये कहेंगे जनाब शहीद हो गए इस काज में, जानता वो है जिसका कोई शहीद होता है। हम क्या जाने, इन लीडरों का कौन सा बच्चा शहीद हुआ?
मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कुछ भी मिलना है वो नई दिल्ली से मिलेगा, इसीलिए नई दिल्ली के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उनका दल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला तो उन्होंने उन पर भी ये बात बल देकर कही। इस बीच हकीम मोहम्मद यासीन, जो एक दिग्गज राजनीतिक नेता भी हैं और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा है कि हैदरपोरा इनकाउंटर के हवाले से हमने इसीलिए जुडिशियल प्रोब की मांग की थी क्योंकि जितने भी यहां पर कमीशन बने हैं उनके जो कार्यकाल में जांच हुई है वो मुकम्मल कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें खेद है कि हमारी बात नहीं सुनी गई।
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा कि हम इसको पूरी तरह लोगों के सामने असली हकायक पेश करेंगे, लाएंगे। हम वही उम्मीद अभी भी करते हैं कि अवामी इत्मीनान के लिए, अवाम के शकूक दूर करने के लिए आपने जो वादा किया है लोगों के साथ, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर उससे तो वक्त गुजर ही गया तो भी अभी कोशिश आप जारी रखकर इसको जितना मुमकिन हो सके लोगों के सामने लाया जाए।
उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर नई दिल्ली को ये बताना चाहता हूं कि अगर कश्मीरी लोगों का विश्वास जीतना है तो उसके लिए उन्हें गैर मामूली निर्णय लेने होंगे।
सिफ्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتاو، ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا سفل مہیلائیں، پر اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم آج کی بات۔
آج کی بات،
دوستو کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں احمد عباس۔ کارکرم میں آج ہم بات کریں گے بھارت میں ہندوتو اور ہندو دھرم پر جاری بحث کی۔ شروتاؤ، بھارت میں یہ بحث ویسے تو بہت پرانی ہے کہ ہندوتو کیا ہے اور ہندو دھرم کیا ہے، دونوں میں انتر کیا ہے، لیکن کانگریس پارٹی کے نیتا راہل گاندھی نے ایک بیان دے کر اس بحث کو پھر سے چرچا کے کیندر میں پہنچا دیا ہے۔ راہل گاندھی نے راجستھان کے جے پور میں بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ جو ہندو ہوتا ہے وہ ہر دھرم کو مانتا ہے، لیکن جو ہندوتوادی ہوتا ہے وہ کسی دھرم کو نہیں مانتا، وہ صرف ہنسا میں وشواس رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور اہنسا میں وشواس رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی ہندو تھے اور گوڈسے ہندوتوادی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کیندر سرکار ہندوتوادی ہے، جس کا کام صرف آپس میں مار کاٹ کروانا ہے، یہ لوگ ستا کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ راہل گاندھی نے کہا کیا ہے۔
میں ہندو ہوں مگر ہندوتوادی نہیں ہوں، یہ سب ہندو ہے مگر ہندوتوادی نہیں ہے، اور آج میں آپ کو ہندو شبد اور ہندوتوادی شبد کے بیچ میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، مہاتما گاندھی ہندو، صحیح بولا، مہاتما گاندھی ہندو، گوڈسے ہندوتوادی۔ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہندو ستیہ کو ڈھونڈتا ہے، مر جائے، کٹ جائے، پس جائے، ہندو سچ کو ڈھونڈتا ہے، اس کا راستہ ستیہ گرہا۔ پوری زندگی وہ سچ کو ڈھونڈنے میں نکال دیتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے آٹو بایوگرافی لکھی، مائی ایکسپیریمنٹس ود ٹروتھ، اور انت میں ایک ہندوتوادی نے ان کی چھاتی میں 3 گولی ماری۔
کانگریس نیتا کے اس بیان کو سن کر یہی لگتا ہے کہ وہ ہندوتوادی اور ہندو دھرم کا انتر بتاتے سمے دراصل بھارتی جنتا پارٹی RSS اور ان سے جڑے سنگٹھنوں کے رویے کو ہندوتو بتاتے ہیں اور اس کی آلوچنا کرتے ہیں۔ راہل گاندھی کے کئی بیان اس انداز کے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے اس مدے پر بھاجپا اور RSS کو گھیرنے کی یوجنا بنائی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنے ایک بیان میں کانگریس کے پورو ادھیکش نے ہندو دھرم اور ہندوتو کا انتر بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ راہل گاندھی نے ترک دیا کہ اگر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو ان کا نام ایک ہی کیوں نہیں ہے، اگر دونوں ایک ہی ہیں تو ہندو دھرم کیوں کہا جاتا ہے، صرف ہندوتو کیوں نہیں، نشچت روپ سے دونوں بھن چیزیں ہیں۔ کیا سکھ یا مسلم کو پیٹنا ہندو دھرم ہے؟ بے شک ہندوتو میں ہے، لیکن کیا ہندو دھرم اخلاق کی ہتیا کو لے کر ہے؟ کس پستک میں یہ لکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنیشد پڑھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے، ایک بے گناہ کو مارنا کہاں لکھا ہے؟ میں نہیں کھوج پایا ہوں، میں ہندوتو میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ دراصل یہ مدعا بار بار اٹھتا رہا ہے، مگر حالیہ دنوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے جڑے سنگٹھن کھلی جگہ پر نماز کو لے کر بہت مکھر ہو گئے ہیں اور نماز پڑھے جانے کی جگہ ایکترت ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں اور نماز میں وگھن ڈالتے ہیں۔ اس سے کچھ ٹیکہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ہندوتوادی سنگٹھنوں نے اب ہندو مسلم مدعے کو اچھالنے کا من بنا لیا ہے۔ اس مدعے کو ویسے تو دلی کے مکھیمنتری اور عام آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیجریوال بھی اٹھا چکے ہیں اور نماز میں وگھن ڈالنے کی کوششوں پر ٹپنی کر چکے ہیں۔
اصلی ہندوتو ہے کہ ہر مسلمان اپنے بھگوان کی پوجا کرے، کرسچن اپنے بھگوان کی پوجا کرے، ہندو اپنے بھگوان کی پوجا کرے، سب لوگ شانتی سے پوجا کریں۔ ایک دوسرے کی پوجا میں وگھن ڈالنا یہ راکشسی پرورتی ہے، یہ ہندوتو نہیں ہے۔
ہندو دھرم اور ہندوتواد کے وشے پر ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں کانگریس کے نیتا اور سانسد ششی تھرور اور آر ایس ایس کی وچاردھارا کے سمرتھک راجیہ سبھا سانسد اور لیکھک ونے سہسر بدھے آمنے سامنے تھے۔ ششی تھرور کانگریس پارٹی کے ورشٹھ نیتا ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی پہچان ایک اچھے وچارک، لیکھک اور وکتا کی بھی ہے۔ وہ ہندو دھرم اور ہندوتو کے بارے میں وستار سے بات کرتے ہیں۔
Well, look, I think the challenge with defining a good Hindu is, of course, that Hinduism is a very large, eclectic, vastly encompassing religion that has tremendous amount of choice and freedom within it, which is actually one of the great strengths of Hinduism. The problem with Hindutva is it takes this vast, all-encompassing religion and tries to semitize it, in a sense, tries to reduce it to something much narrower, and specifically to tie it to a political identity. Savarkar was not a particularly religious Hindu. He's hardly been known to frequent a temple, but he wrote about Hindus. He actually was very much of a piece with the kind of political thinking in the world in the 1920s, which was asserting a new muscular nationalism based on race, pride and ethnicity.
سماجک کاریکرتا اور سانسد اور وچارک سہسر بدھے ہندوتو کی الگ پریبھاشا اور کلپنا پیش کرتے ہیں۔
ہندوتو اکارڈنگ ٹو می ایز آئی انڈرسٹینڈ از دی ادر نیم آف واٹ آئی ڈسکرائب ایز اسپرچل ڈیموکریسی، ویئر وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی ہیگمنیزم، ویئر وی ڈونٹ ٹاک آف اینی مونوپولیسٹک ویو۔ وی بلیو ایکم ست وپرا بہودا ودنتی، اینڈ دیٹ از ہندوتو۔ ہندوتو از دا کور آف ایوری تھنگ دیٹ از ہندو۔ But then Hindu religion as such, there are so many rituals, there are so many diversities. Some people apply tilak vertically, some people say no, it has to be horizontal, and both are right. Unfortunately, Hindutva has become a favorite whipping boy for people like Shashi Tharoor, and I have gone through his book. His style is superb, but the content, unfortunately, is far from facts.
اس طرح کی بحثوں کو دیکھ کر یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ دونوں وچاروں کے ساہتک اور ویچارک انتر شاید بہت پاردرشی نہیں ہے، لیکن فرق سمجھنے کے لیے کچھ سنگٹھنوں کے کریا کلاپوں کو پریبھاشا کے طور پر سامنے رکھا جاتا ہے۔ بھارت کے جانے مانے وچارک دیودت پٹنائک ایک بات چیت میں ہندو دھرم اور ہندوتو کا انتر وستار سے بیان کرتے ہیں۔
اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکال دیں گے تو ہندوتو شبد نکل جائے گا، لیکن ہندو دھرم شبد نہیں نکلے گا، سمپل ہے۔ تو یہ ہندوتو شبد ایک پولیٹیکل راجنیتی سے آ رہا ہے، ووٹ بینک پولیٹکس سے آ رہا ہے، تو اس کا ایک جگہ ہے، اس کا ایک جگہ ہے۔ لیکن ہندو دھرم تو 3000 سال پرانا ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گا، اس لیے ہم ہندو دھرم کو سناتن کہتے ہیں، راجنیتی کو سناتن نہیں کہتے۔ تو اہنکار سناتن نہیں ہے، آتما سناتن ہے۔ ہندو دھرم آتما کی بات کرتا ہے، راج دھرم کی بات کرتا ہے، ہندوتو اہنکار کی بات کرتا ہے اور راجنیتی کی بات کرتا ہے، ووٹ کے بارے میں بات کرتا ہے، ستا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ये फर्क अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो मतलब आपको दूध और छाछ में फर्क ही नहीं दिखाई दिया।
एक मुद्दा ये भी है कि ये सारा विमर्श कहीं न कहीं चुनावों से भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। भारत के 5 राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए भी इस तरह की बहसें तेज हो गई हैं। भारत के टीकाकार प्रेम कुमार कहते हैं कि जिन्हें हिंदुत्ववादी ताकत कहा जाता है, अब उनके नेताओं के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है कि कौन ज्यादा कठोर हिंदुत्ववादी है। लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। प्रेम कुमार का इशारा उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव से पहले भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से आने वाले कम्युनल बयानों की ओर है।
अगर योगी आदित्यनाथ जी को चेहरा बना करके बीजेपी लड़ेगी, निश्चित रूप से चुनाव हार जाएगी बीजेपी। ये बात मैंने 2-2.5 महीने पहले कही थी, आज भी हो सकता है कई लोगों को कहने में दिक्कत हो, लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये हिंदुत्व का मुद्दा जो है अकेले उत्तर प्रदेश में काम करने वाला नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा, इस पे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है। मेरी सोच के पीछे वजह यह है कि पहले भी जब मान लीजिए अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुए थे तो उसके ही सरकारें बर्खास्त हुई थी, तब जनता ने जो रिएक्ट किया था उन सरकारों को पलट दिया था, बीजेपी दोबारा जीत के नहीं आई। देश में भी बीजेपी की जो भी हालिया जीत है उसमें राम मंदिर निर्माण से जीती हो बीजेपी ऐसा नहीं लगता, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जीती हो ऐसा नहीं लगता। लेकिन कई लोग मानते हैं कि नहीं, हिंदुत्व के एजेंडे पर जीतती है, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर न बीजेपी को पहले जीत मिली है न इस बार मिली है।
ये तो तय है कि किसी भी मुद्दे पर अगर बहस को सही दिशा में ले जाना और सही नतीजे तक पहुंचना है तो ये बहस बुद्धिजीवियों के स्तर पर और एकेडमिक मंच से होनी चाहिए। जैसे ही इस तरह की बहस राजनीतिक गलियारों और मीडिया के कार्यक्रमों तक पहुंची, इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि बहस एक अलग ही दिशा में निकल जाए। कारण यह है कि चुनावी मंच और मीडिया के कार्यक्रमों में प्रतिद्वंद्वियों के बीच जब बहस होती है तो मंशा अलग होती है। जहां तक चुनावों का सवाल है तो आम वोटरों और जनता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनकी समस्याओं का निदान किस तरह हो। भारत उन देशों में है जो कोरोना वायरस की महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर पड़ा है। इन हालात में आम जनता के बहुत से वास्तविक मुद्दे हैं जिनका समाधान जरूरी है। चुनावी और राजनीतिक विमर्श, इसी तरह मीडिया की डिबेट अगर इन मुद्दों पर केंद्रित होती है तो निश्चित रूप से उनके आयामों के प्रकाश में आने और फिर उनके समाधान खोजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है रविश जैदी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज के कार्यक्रम में ईरान की एक अनसफल महिला से परिचित होंगे। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आएगा।
दोस्तों, वे महिलाएं जिनको कला से प्रेम होता है, उनके अंदर एक क्षमता होती है कि वे अलग अलग भूमिकाओं को स्वीकार कर सकती हैं, और इसलिए वे हमेशा एक समय में कई भूमिकाओं को निभाती हैं। पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ ईरान भी जूझ रहा है। इस संकट ने सार्वजनिक और सामान्य सामाजिक संतुलन को बिगाड़ कर स्थिति को बदल दिया है, और एक सार्वजनिक दृढ़ संकल्प में घर को दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान बना दिया है। कोरोना महामारी के संकट के समय इससे निपटने और इसके प्रबंधन में महिलाओं ने प्रभावी भूमिका निभाई है। आज के कार्यक्रम में हम कोरोना संकट को नियंत्रित करने में ईरानी महिलाओं के प्रभावी प्रबंधन पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे।
दोस्तों, कोरोना महामारी के समय महिलाओं ने एक ही समय में कई तरह की भूमिकाओं को निभाया है। उन्होंने इस संकट में परिवार के साथ साथ समाज को भी इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं को अदा किया है। इस संकट के समय में महिलाएं जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां स्वीकार कर रही हैं, वो उनके भीतर पाई जाने वाली योग्यताओं और क्षमताओं के कारण हैं। महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अंजाम दी जाने वाली ये सभी जिम्मेदारियाँ उनके मूल्यों और उनके नैतिक गुणों को दर्शाती हैं। डॉक्टरों और नर्सों के रूप में महिलाओं के कौशल और पेशेवर प्रयासों के अलावा जो भावना और देखभाल की शक्ति से भरे एहसास के साथ देश को संभाले हुए हैं, ये वे महिलाएं हैं जो स्वयंसेवक हैं। इनमें वो माताएं और पत्नियां हैं जिन्होंने घर पर रहे आंदोलन को अच्छी तरह से प्रबंधित किया है।
घर महिलाओं के कौशल और विवेक की पूरी कहानी बयान करता है। सदस्यों के बीच सकारात्मक और सशक्त दृष्टिकोण बनाने, मन की शांति बनाने और साथ में रहने वालों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने में महिलाओं का अहम रोल होता है। इसी तरह परिवार को एकजुट और मजबूत बनाए रखना महिलाओं की पवित्र प्रतिबद्धता में से एक है। इन दिनों पुरुष और महिलाएं पहले से कहीं अधिक परिवार की आत्मा और जीवन की रक्षा के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में महिलाओं ने जागरूकता के उपलब्ध साधनों और संसाधनों का उपयोग करके परिवार में आगे बढ़ने और प्रयास करने की भावना को जगाने की कोशिश की है। इस संकट भरे माहौल में महिलाएं अपने बच्चों और जीवन साथी के सकारात्मक सोच और प्रेरणा का स्रोत बनी हैं।
जैसा कि परिवार और सामाजिक क्षेत्र में महिलाएं हमेशा अपने आसपास पैदा होने वाली कमियों और असंगतियों को ठीक करने में लगी रहती हैं, दूसरे शब्दों में इसको इस तरह कह सकते हैं कि महिलाएं शांति की वे दूत हैं जो हर बार रचनात्मक होने के लिए एक नई रोशनी बनती हैं। निसंदेह अज्ञात और अप्रत्याशित अवधि के लिए परिवार के सदस्यों की एक साथ लंबी उपस्थिति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खरीदारी केंद्रों का बंद होना, यात्राओं का रद्द होना और शहरी यातायात में कमी शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बनी है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में अलग अलग लोगों से मिलना, अच्छे विचारों और शब्दों का आदान प्रदान करना बेचैन और तनावग्रस्त इंसान को मानसिक शांति देता है। इन परिस्थितियों में महिलाओं की सहानुभूति और परोपकार की भावना ने घर, परिवार और समाज को तनावग्रस्त जीवन से बाहर निकालने में काफी मदद की है।
कोरोना महामारी अभी भी दुनिया भर के देशों में अपने चरम पर है, और कई देश अभी भी ऐसे हैं जहां क्वारंटाइन का सिलसिला जारी है। इस बीच नई संभावनाओं वाले रचनात्मक दिमाग हर दिन नई सामग्री तैयार करने के लिए नए नए तरीके आजमाते हैं। जिंदगी गुजारने के नए तरीके इन विकल्पों में से एक हैं। लाइव साइबर स्पेस में असीमित जीवन व्यापन करना, इस तरह इंस्टाग्राम की सामग्रियों से लाभ उठाना, जैसे कहानियां पढ़ना, चैट करना, गेम खेलना, खाना पकाना सीखना और लाइव लोगों से बात करना शामिल है। वहीं आज बहुत सारी महिलाएं और माताएं नई नई चीजें सीखने और यहां तक कि पढ़ने और पढ़ाने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग करती हैं।
वास्तव में माँ की भूमिका महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान भूमिकाओं में से एक है। ऐसी महिलाएं जो समाज के पालन पोषण और शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, परिवार में तनाव पैदा होने की स्थिति में अपने स्त्री ज्ञान के जरिए तनाव के कम करने और उस पर काबू पाने में कामयाब रहती हैं और परिवार के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखती हैं। साथ ही घर के हर कोने को सैनिटाइज करना, खान पान की वस्तुओं को हर प्रकार के कीटाणुओं से सुरक्षित रखना, पारिवारिक वातावरण में व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य की संस्कृति को बढ़ावा देना, अनावश्यक खरीदारी न करना और इन परिस्थितियों में पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन न करना, ये सब वे कार्य हैं जो घर की महिलाओं द्वारा उठाया जाने वाला प्रशंसनीय कदम और समाज को महामारी से सुरक्षित रखने में उनका सहयोग है।
माताएं सामूहिक रूप से या फिर ऑनलाइन अपने परिवार वालों के साथ भी किताबें पढ़ने में सक्षम रही हैं। कहानी किस्सों को सुनाना, एक साथ किसी खेल का खेलना, घर के बचे हुए कामों को देखना, बच्चों और जीवन साथी की शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रभावी उपयोग और परिवार के सदस्यों के बीच घर के कामों को बांटना और साथ ही ऐसे कामों और तरीकों के बारे में सोचना जो लंबे समय तक एक स्थान पर बैठने और लंबी नींद से छुटकारा दिला सकें।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी महामारी की व्यक्तिगत और सामूहिक रोकथाम और उससे बचाव की गाइडलाइनों पर पालन की शुरुआत पारिवारिक वातावरण से होती है। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि महिलाओं ने इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और परिवार के सदस्यों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाई है। फातिमा मरवी का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने में मेरी भूमिका ये है कि हर दिन परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के स्वास्थ्य के लिए एक अपार्टमेंट में रहने के कारण अपने घर को अंदर से सुरक्षित रखने के अलावा इस खतरनाक वायरस से सुरक्षित रहने के लिए अपार्टमेंट में मौजूद अपने फ्लैट के आसपास के क्षेत्रों को भी सैनिटाइज करती हूँ।
कोरोना महामारी के कारण जहां समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, वहीं इस महामारी ने परिवार के सदस्यों को ये भी मौका दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताएं, बातचीत करें और एकजुट रहें। इन परिस्थितियों ने परिवार को पहले से कहीं अधिक खुशहाल और कौशल जीवन का अनुभव करने के लिए रचनात्मकता और प्रोत्साहन के लिए आधार प्रदान किया है। मरियम करीमी, जिनकी दो बेटियां हैं, वो इस बारे में कहती हैं कि आज मैंने बच्चों को घर पर रोटी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक खुशियों भरा और मजेदार दिन था। बेटियां इस बात को लेकर काफी खुश थीं कि वे अपने हाथों से आटा गूंथ सकती हैं और रोटी बना सकती हैं।
दोस्तों, कोरोना महामारी के संकट के समय परिवार के सदस्यों के साथ रहने से माता पिता अपने बच्चों के शैक्षिक मुद्दों पर अधिक से अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स्कूल बंद होने और छात्रों को घर पर रहने की वजह से बच्चों में बोरियत और कभी कभी अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है। हमीदी अपने बच्चे की पढ़ाई की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि वो अपने बच्चे के खेलने के समय का पूरा प्रबंधन करती हैं। वे कहती हैं कि मैं इस बात की पूरी कोशिश करती हूं कि परिवार के सदस्यों से मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर रखें ताकि वो क्वारंटाइन के समय घर के माहौल में सही से अपना समय गुजार सकें और किसी भी मानसिक तनाव का शिकार न हो।
शुक्रुल्लाही जो छठी कक्षा के शिक्षक हैं और जिन्हें कोरोना से ग्रस्त होने का भी संदेह है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं, इसके बावजूद उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को नहीं भुलाया है। वो बीमार होने के बावजूद साइबर स्पेस के माध्यम से अपने छात्रों को ज्ञान और प्रेम का तोहफा दे रही हैं, ताकि ये साबित कर सकें कि एक शिक्षक कभी भी समय, स्थान, रोग, पीड़ा और दर्द को नहीं देखता है और वो हर परिस्थिति में शिक्षा की रोशनी को फैलाता रहता है। वो ऐसी स्थिति में कि जब उनके हाथों में ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है, वो बच्चों को विभिन्न विषय पढ़ाने के साथ ही साथ उन्हें हर स्थिति में संघर्ष करने की शिक्षा भी दे रही हैं।
ये कहा जा सकता है कि पतियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों में पारिवारिक माहौल की सुंदरता को प्रस्तुत करने में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी चीज से ज्यादा मानी जानी चाहिए। पत्नियों द्वारा पतियों के बीच शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना घर में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण कौशल और सशक्तिकरण है। पूरी जिम्मेदारी से ये कहा जा सकता है कि क्वारंटाइन के दौरान से लेकर कोरोना की विफलता तक घर की जिम्मेदारी का मुख्य बोझ महिलाओं के कंधों पर है और इस भारी बोझ को उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रभावी प्रबंधन ने परिवारों को इस संक्रमण काल में एक उच्च और खुशहाल भावना के साथ और कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखने में सक्षम बनाया है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.